मुश्किल अल्फाज की वजाहत। तो सूरत अल माईदा आयत नंबर 6, इसमें जो है वो लफ्ज है कुंतुम, तो क्या है इसके मानी, इसका रूट वर्ड क्या है? काफ वाव मीम, और मानी क्या है? खड़े हो जाओ, है ना, उठो, खड़े हो जाओ। और इलल मराफिकी, मराफिक जो है ये, हाँ, इसका रूट वर्ड क्या है? राफा काफ रिफ्क, इसका रूट वर्ड है राफा काफ रिफ्क, और रिफ्क के मानी होते हैं कोहनी, नरमी के, रिफ्क के मानी होते हैं नरमी के। तो अब आप देखें कि इसी से राफत भी हमें मिलता है लफ्ज, है ना। तो फिर जो है कोहनी को जो है वो मराफिक क्यों कहते हैं, कि यहां से लेकर यहां तक आप आराम से इसको घुमाते हैं हाथ को, है ना, मराफिक। तो ये इसका रूट वर्ड है और ये मानी है। तो अच्छा, आपको पता है कि वैसे मराफिक यानी कोहनी जो है ये कहां तक होती है? बाज लोग टखनों में और घुटनों में फर्क नहीं कर पाते हैं ना, है फर्क उनमें कि नहीं? उनमें भी है, हैं? नहीं, एड़ियों में भी नहीं करते, टखनों में भी नहीं करते, गट्टों वगैरह में और इसी तरह। हाँ अच्छा, आप ये बताएं कि जो है वो कोहनी तक की जो जगह है ये कहाँ तक होती है, बताएं? हाँ, तो यानी हाथ से लेकर, तो ये जो जोड़ है ना, ये पूरा बाजू जहां तक कहलाता है, ये तो यहां तक जो है ये कोहनी कहलाती है। और रिफ है इसका रूट वर्ड, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रूट वर्ड जो है वो आपको याद रहेगा, रिफ का, राफा कॉफ। और अगर आप याद रखें तो जैसे रफीक, रफीक का रूट वर्ड क्या होता है? वो भी रफीक, दोस्त को कहते हैं। तो दोस्ती में भी नरमी मोहब्बत जो है वो जरूरी है। और इसी तरह ये कहते हैं कि जैसे कोहनी जो होती है ना, इस पर आप ऐसे करके आराम भी करते हैं, है ना। तो इर्तफा का आराम करना, टेक लगाना, उसके लिए भी अरबी में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? ऐसे आप आराम करते हैं, तो गोया के आपको जो है इसके लिए फिर कितने लफ्ज पता चले? रफीक और मिर्फक और इर्तफाका, और सबके अंदर जो है नरमी, आराम जो है ये चीजें पाई जाती हैं। तो मतलब दोस्त भी उसको कहते हैं जिसमें सख्ती ना हो, दुरुस्ती ना हो। और इसी तरह जो है कोहनी को मिर्फक कहते हैं कि उससे टेक लगाए इंसान को, आराम महसूस करता है। मिर्फका छोटे से तकिए को भी कहते हैं मिर्फका। और इसी तरह से मर्तफक ऐसी जगह को कहते हैं जहां आराम भी मुयसर हो और कोई खलल अंदाज भी ना हो। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, नेमत सवाब व हसनत मुर्तफका। हाँ, तो जन्नत क्या ही खूब बदला है, क्या ही अच्छी आरामगाह है। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि इसका जो है वो मराफिक रिफ्क से है। और दूसरा जो लफ्ज है वो क्या है? वमसहू। तो वमसहू आपको पता ही है कि क्या मानी है उसके? मीम साहा, और मानी क्या है? मसा करना, फेरना, फेरना। फिर इसके बाद जो है अगला जो अहम लफ्ज है वो है काबैन, काबैन, काफ ऐन बा, ये इसका रूट वर्ड है, पहले भी पढ़ चुकी हैं। और क्या मानी है इसके? काफ ऐन बा जो है ये उभार को कहते हैं, उभार यानी, और इसके मानी है टखना। फिर जो कोई उभार भी टखने की तरह हो, इस पर भी काफ का लफ्ज बोला जाता है, काफ ऐन बा। तो बाज़ुकात कहते हैं काबतिल जारिया, नौजवान जो लड़की है उसके पिस्तान जो उभरे हुए हैं, उसके लिए भी आता है, यानी कोब औरत के उभरे हुए पिस्तान या काइब। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, इन्नलिल मुत्तकीना मफाजा حدائق وعنابا وكواعب اترابا. تو وہاں پہ کواعبا جو ہے نا وہ نوجوان کے لیے بولا جاتا ہے. تو اترابا ہم عمر, تو نوجوان کو کب ہوتے ہیں کہ جب جو ہے یہ سینے کا ابھار جو ہے یہ نمایاں ہونے لگتا ہے. تو کا عین با کے معنی کیا ہے؟ ابھار. جیسے یہ تخنا ہے اس کا ابھار ہوتا ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ اس کا بھی سینے کا ابھار ہوتا ہے. تو یہ ہے اس کے معنی ابھار کے. اور ابھار اگر یعنی پھیلاؤ میں ہو اور بلندی تقریباً برابر ہو تو یہ کعب ہے, کاف عین با. اور ویسے اس کے لیے اور بھی لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, حدب اور نجد اور سمت. تو بہرحال ابھی اتنا ہی کافی ہے کہ, اور یہاں پہ چونکہ کعبین ہے تو دو ٹخنوں کا, تو دو ٹخنوں تک. تو کیا ہے پھر ٹخنے؟ اب ہاتھ لگا کے بتائیں. پاؤں کے بالکل ساتھ ہی. ہاں ہاں, یہ آپ لوگ نے ماشاءاللہ ٹھیک بتایا ہے کہ پاؤں جہاں پہ ہماری ایڑی کے ساتھ ہی جو ابھار نظر آتا ہے نا اوپر کو تھوڑا سا, اس کو کعب کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے اور غائط, یہ آپ پڑھ ہی چکی ہیں. غین و توئے غوط, اور یہ ویسے کہتے ہیں گڑے کو بھی کہتے ہیں, نچلی زمین کو کہتے ہیں, اور ادھار کے معنی لے کر بیت الخلاء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ نچلی زمین میں کہیں جا کر جو گڑا سا ہوتا تھا وہاں جا کے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے فتح یم مامو. تو فتح یم مامو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یا میم, اور معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. پھر آپ حرج لفظ ہے. حرج جو ہے ہار را جیم پہلے پڑھ چکی ہیں, یہ گھنی کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں جہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نا یہ نا معنی اور مادی دونوں لحاظ سے لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک تو جھاڑی حرج کہ جس میں سے آپ گزر نہیں سکتے, ہے نا, گھنی بھی ہے اور کانٹے بھی لگے ہیں. دوسرا یہ کہ دل حرج بن جائے, دل میں اتنے شکوک اور شبہات ہوں اور اتنے مسئلے مسائل ہوں کہ انسان جو ہے نا دل تنگ محسوس کرے یا اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو, تب بھی یہ معنی دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ آگے چلیں تو سارے آپ پڑھی چکی ہیں اس میں جو لفظ ہیں. اور یہاں پہ قسط جو استعمال ہوا ہے یاد رکھیے گا کہ یہ اس کی خاص بات کیا ہے؟ ذوی الاضداد میں سے ہے. شاباش. اور شنعانو جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کیا روٹ ورڈ ہے؟ سین نون حمزہ. گنگا الٹی نہیں بہنی چاہیے, سین نون حمزہ. اور آپ اسی لفظ کو یاد رکھیں, کسی کے ساتھ ہے سین نون حمزہ. اچھا پھر اے دلو عدل کی بھی خاص بات کیا ہے؟ یہ بھی ذوی الاضداد میں سے ہے, یہ تو ہوئی نا بات. اقربو کی خاص بات کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے کہ زیادہ قریب ہونا. پھر آیت نمبر جی آیت نمبر جو 10 ہے 10, اس میں جہیم لفظ ہے. جہاما کس کو کہتے ہیں؟ شیر کا گھورنا. آپ کو ہاں دھاڑ کے لیے بھی اور گھورنے کے لیے آپ کو شیر دکھایا تھا نا, تو یہ بھولنا نہیں چاہیے. تو جہیم یعنی جہنم کی دھاڑ, اس کا گرجنا, اور جہنم جو اپنے جو بھی اس کے اندر مجرم آئیں گے جو اس کو وہ گھورے گی اور انتظار کرے گی, تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یبسطو بسطا پھیلانا کے لیے آتا ہے, بسیط. فکفا کافا فا, ویسے معنی کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی کو. اور آپ جب کسی کو روکتے ہیں کسی چیز کو تو آپ ہتھیلی کو آگے کرتے ہیں, ہے نا, زور توڑنے کے لیے یا روکنے کے لیے بھی آپ ہتھیلی بعض اوقات آگے کرتے ہیں, ہے نا, تو روک دیا اپنی ہتھیلی پر. اور فکفا ایدیہم عنکم, ہے نا, ان کے ساتھ. آگے ہے نقیبہ, آیت نمبر 12 ہے. نقیبہ نون قاف با نقب. اور نقب جو ہے ویسے اس کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ سوراخ کرنا. جیسے نقب زنی, چور جب چوری کرتا ہے, ہاں ڈیٹیکٹیو کا, یا یہ پھر کہ اس میں جیسے وہ سوراخ کرتا ہے, تو اسی طرح نقیب جب وہ سوراخ کرتا ہے یا اس کے اندر تک جاتا ہے تو نقیب کیا کرتا ہے؟ نقیب جیسے کہتے ہیں جو لوگوں کے حالات کی جستجو کرتا ہے, ان کے معاملات کی ٹو لگاتا ہے, کھوج لگاتا ہے. سمجھ آئی؟ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ पता करते रहते हैं कौन क्या कैसे किस तरह कर रहे। तो चोर भी क्या करता है, चोरी छुपे जाकर एक उसने सुराख कर लिया। तो ये जाहिरी लिहाज से भी इस्तेमाल होता है और मानवी लिहाज से भी, है ना। तो यहाँ पे नकीबा के मानी क्या है, सरदार के, निगरान के, जिम्मेदार के, मोनिटर, उसरा जात का कोई इंचार्ज अगर है नकीब, यानी उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब कोई कोई लीडर कहीं बन गया, कुर्सी मिल गई। मानी क्या है कि निगरानी करना, लोगों के असल हालात मालूम करना, उनकी हिफाजत करना, उनकी क्या मसाइल मुश्किलात है उनका हल करना। तो उसरा जात के इंचार्जेस के क्या फरज है ये आगे पता चलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला हम लफ्ज है अजर तुमू, है ना, आइन जा। तो इसके इसका यानी आपने ये लफ्ज पहले पढ़ा है अजर तुमू, पढ़ा है आपने, है ना। तो हाँ, वैसे आप देखें कि हमें बहुत से लफ्ज मिलते हैं, तो अजर तुमु जो है इसका रूट वर्ड रुबाई है ऐन जा जारा, ऐन जा जारा। मानी इसके क्या है, मदद करना। एक मदद होती है, ऐसे ही कोई मदद करता है, है ना। जैसे मदद के लिए भी कुरान में वैसे लफ्ज तो नौ है। एक तो है ऐन वो नून, किसी का हाथ बैठाना, जैसे आप तावन, आपने भी पीछे ही पढ़ा तावन बिरे वाला तावन इसमें वालू दवान। तो आइन वाओ नून क्या है, किसी की मदद करना, एक दूसरे का हाथ बटाना। और आप ये भी कहते हैं ना इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन, नस्ताइन का रूट वर्ड क्या है, आइन वाओ नून। दूसरा है नसारा, किसी की तकलीफ या जुल्म ज्यादती दूर करने के लिए उसकी मदद करना। और इसको आप याद रख सकती हैं कि वला का नसरा कुमुल्लाहु बिबदरी वअंतुम अज़िल्ला, ठीक है ना। फिर तीसरा इसका लफ्ज है अय्यदा, यद से है सख्त कुवत, खूब मदद करना, है ना। फिर इसके बाद अज़ारा, यानी जज्बा ताजीम के साथ मदद करना, जज्बा ताजीम, इज्जत और एहतराम के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ जो है वो मदद करना, अज़ारा। फिर एक है अज़ाज़ा, एक तो अज़ारा है ना, एक अज़ाज़ा जा से, यानी जे जे है दोनों, किसी की इतनी मदद करना कि फिर उसकी कमजोरी दूर हो जाए। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि इज अरसलना इलैहिम उस्नैनी फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिस। ये आप में से बाज़ों को ये सूरत आती है, सूरत यासीन, शाबाश। जब उन्होंने कौम ने जो है वो दो को हमने रसूलों को जो भेजा था उनको झुटला दिया, तो हमने क्या किया फअज़्ज़ज़ना बिसालिस, फिर हमने तीसरे से उनको कुव्वत दी, मदद की कि कमजोरी दूर हो जाए, ठीक है। छठा लफ्ज है जाहरा, जाहिर होना, नुमाया होना, और ये है पुश्त को भी कहते हैं, यानी ऐसी कुव्वत जिसके बलबूते पर कोई काम कर ले, पुश्त पनाही देना। सातवां है रफादा, कोई गरीब है तो उसको अतिया खैरात देकर मदद करना। कुरान में आता है बेसर रिफ्दुल मरफूद, बुरा है वो इनाम जो इन्हें मिलता रहेगा, यानी क्यामत के दिन जो उनको मिलेगा ना। रफादा, राफादाल, रफादा। आठवां है रदा, रदा जो है रिदुन, इसके मानी क्या है कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वाखी हारूनु वा अफसहु मिन्नी लिसानन फअरसिलहु मईया रिद अन युसद्दिकुनी, कि क्यों मेरे साथ भेज दीजिए अल्लाह ताला कि वो मेरी तस्दीक करे। रिद अन युसद्दिकुनी, तो रिदुन कहते हैं ऐसी मदद करना कि हर वक्त मदद के लिए कोई साथ लग जाए। तो मेरा भाई क्या करेगा, वो मेरी मदद करता रहेगा, हर वक्त की मदद में मुझे मुहैया होगा। फिर नावा है अमद्दा, मद से है किसी चीज को खींचना, फैलाना, लंबा करना। और ये आपको याद ही होगा युम्दिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की माल से और फिर बेटों से। तो ये है नौ अल्फाज, आना, नसरा, अय्यदा, अज़रा, अज़ाज़ा, और उसके बाद जो है ज़ाहरा, रफ़ादा, रिदउन और अमद्दा। हमजा, और बाकी जो है आप सब पढ़ी चुकी हैं कि नकद हिम का क्या है रूट वर्ड, नून काफ गॉड, क्या मानी है इसके,
तोड़ देना।
और कासिया तुन का रूट वर्ड क्या है, सख्त हो जाना, कासिन वो, है ना, दिल की सख्ती पड़ चुके हैं। फिर इसके बाद जो है ये जरा आप देख लें, वला तजालू, तजालू तो जाइल से है, कैसे कहते हैं, जब भी लाम शुरू में आएगा तो हमेशगी के मानी देगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये निशानी नहीं भूलनी कि वला तजालू जो है, वैसे तो तजालू जाइल होना है ना, जाइल हो जाना, और क्या है इसका रूट वर्ड जाइल होने का, जा या लाम अलग हो जाना, या फिर बात कहते हैं कि इसका है जा वो लाम, जौल से है, जवाल भी इसी से है, ढलना, यानी इसका रूट वर्ड क्या है, जा वो लाम, जवाल, ढलना, और ला या जालू नहीं ढलेगा, हमेशा रहेगा। खाइनतीन का रूट वर्ड क्या है, खा व नून, खयानत, धोखा दही। फिर अहम लफ्ज जो है, जो नया है आपके लिए, फाग़रीना, आयत 14 के मिडल में है, फाग़रीना, फाग़रीना जो है इसका रूट वर्ड है गैन रा या, गैन रा या, पीछे लगाना, पीछे लगना, जैसे होता है ना कुत्ते या किसी शिकारी जानवर को मुश्तैल करके किसी शिकार के पीछे लगा देना, एक तो है ना, यानी किसी चीज को उभार कर दूसरे के पीछे लगाना, खूब मुश्तैल करके, जैसे एक तो है अतबा, अतबा जो है इसका मतलब क्या होता है, पीछा करना, ताकुब करना, पैरवी करना, जैसे कुरान में आता है फतबउहुम मुशरिकीन, के फिरौन के दरबारियों ने सूरज निकलते ही बनी इसराइल का ताकुब किया, फअतबउहुम मुशरिकीन। और अतबा का क्या मतलब होता है, ये लाजिम और मुतदी दोनों तरह इस्तेमाल होता है, कि खुद पीछे लग गए और लोगों को भी लगा दिया, असर उन तक पहुंच गया, ठीक है, अब लाजिम मुतदी नहीं भूलेगा आपको। तो अतबा एक होता है पीछे लगना, दूसरा होता है कफा, है ना, ये किसे कहते हैं कफा, हाँ इसका मतलब होता है कि ये वैसे किसको कहते हैं, गद्दी, गद्दी को कहते हैं, पीछे गद्दी जो है, हाँ, और मैंने क्या कहा था, रीढ़ की हड्डी के मोहरे एक के बाद दूसरा होता है ना मुसलसल, पीछे आपने पढ़ा था ये फकफ सही ना, एक के बाद दूसरा रसूल भेजा, तो मानी क्या होते हैं कि जिससे रीढ़ की हड्डी के मोहरे एक के बाद दूसरा होता है, इस तरह किसी के पीछे लग जाना बिल्कुल, यानी, और ये भी हमें कुरान में मिलता है ना कि वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, और जिस चीज का तुझे इल्म नहीं इसके पीछे ना पढ़, वकफ सही ना मिन बाद ही बिर रसूल, तो ये दोनों, तो पीछे लगने के लिए अतबा भी है और कफ़ैना भी है, है ना, तकफू वगैरह, और तीसरा लफ्ज जो आज आपने पढ़ा वो क्या है, अगरा, कि हमने लगा दी आपस में जो है वो इनके दरमियान में दुश्मनी और बगावत, बुगत और दुश्मनी, तो ये कैसे पीछे लगना है, अब रसूल जो एक दूसरे के पीछे भेजे यानी लगातार थे एक के बाद दूसरा, है ना, और क्या फर्क है फिर इनके अंदर, कि अतबा में लाजिम और मुतद्दी दोनों तरह इस्तेमाल होता है, पीछे लगना और लगाना, कफा जो है किसी के पीछे वैसे ही पड़ जाना या लगातार कोई चीज हो, और कफाज जो है यानी ये भी इसी में आता है, जैसे कफा किसी के पीछे पड़ना, कफा शद के साथ आए तो किसी के पीछे किसी को तसलसल के साथ लगा देना, और अगर अगरा आए तो किसी चीज को उभार कर दूसरों के पीछे लगा देना, जैसे कुत्ते को शिकार के पीछे लगा दें या और भी, ठीक है, तो ये है आपका आज का मुश्किल अल्फाज की वजाहत, बसौ का यूनबे बिमा कानू यसना ऊन।